सम्मान योग गुरु रूप प्रसाद संगति योग फतेह गुरुआन करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हरी जस आप कीर्तन राही सरवन कर रहे सी कि कीर्तन गुरु घर दे विच प्रभु प्राप्ति का प्रधान साधन है, मुख्य साधन है। कीर्तन सुनदे हां जो विचार बने ने वो मैं थोड़ी झोली विच पाउण दी कोशिश करा। कुछ पशु पंखियां दी बनस्पति दी पहचान उन्हां दे लक्षणां करके हुंदी है, कहिंदे लक्षणां बिरती। कुछ लक्षण किसी बनस्पति विच दिखाई दे जाण, किसी पशु पंखी विच दिखाई दे जाण, किसी मनुख विच दिखाई दे जाण, तां उन्हां लक्षणां करके ही पहचान होंदी है। किसी कलाकार दी, किसी चोर दी, किसी बदमाश दी कुछ लक्षण प्रगट होंदे ने, उन्हां लक्षणां तों ही असी मनुख दी जिंदगी का अंदाजा लांदे। इसी तरीके नाल कुछ खूबियां कुछ औगुण पशु पंखियां विच ने, उन्हां करके सानू उन्हां दी होंद दा, उन्हां दी मानसिक बिरती दा, उन्हां दी अवस्था दा पता चलदा। जिस स्थान ते तुसी बैठे हुए धार्मिक मंदिर है ते धर्म तक पहुंचण दा एक जरिया है, एक साधन है, एक उपराला है। हुण कोई बंदा धर्मी हो गया है ते वो धर्म तक पहुंच गया है, परमात्मा तक पहुंच गया है, उसकी की पहचान, किस तरह पहचान करोगे? तो शायद कहीं कुछ लक्षण करके पहचान होती है, और कुछ नहीं, और कोई तरीका नहीं। जिसे इतने सारे बैठे हो, किस तरह पहचान करांगे कि ये बंदा गुरु तक पहुंच गया है, ये बंदा रब तक पहुंच गया है, मनुख ईश्वर तक पहुंच गए? धर्म की दुनिया में बहुत वड्डा धोखा चलता है, तो इस वास्ते कि बाहरों अगर मनुख ने कुछ प्राप्त कर लिया है तो सबूत दे सकता है मेरे कोल ये है, पर हुण किसी नूं रब मिल गया है तो कोई रब तक पहुंच गया है, इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक श्रद्धा से विश्वास करना पड़ेगा। इस वास्ते धर्म की दुनिया में बड़ा भारी धोखा चलता है, जो नहीं भी पहुंचे है वह भी पहुंचने का दावा करता है, भाई मैं पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहुंचे हुए मनुख के कुछ लक्षण लिखे हैं, लफ्ज में दोहरा दिया, धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है और कुछ नहीं, ते धर्मी हो जाना एक साधना है, एक मेहनत है, एक तपस्या है, जप है, तप है। श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना बड़ी सौखी गल, थोड़ा जिहा हार श्रृंगार किया, क्योंकि धर्म के भी कुछ ऐसे कपड़े ने, कुछ ऐसा लिबास है जिन्हों पहनते हैं लोग संत गुणी ज्ञानी महात्मा कहन लग पेंदे ने, तो थोड़ा जिहा श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना होर गल है, साधना करके धर्मी हो जाना और गलत है। कोई साधना करके धर्मी हो गया है, उन जरूरी नहीं कि वो धर्मी दिसता भी हो गया, कोई पता नहीं। कारण कि धर्मी दिस पैना एक बार की रूपरेखा है, धर्मी हो जाना एक मन की अवस्था है, एक अंदर की हालत है। साहबां की बाणी कहती है कि लोगों ने रब की प्राप्ति खिडौने समझे हुए, माथे तिलक हथ माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना, दो माला गले पा लिया, दो माला हथ से बन लिया, धर्मी दिसण दियां निशानी सबूत हो गया, क्योंकि मेरे को माला है, गल विच मैं पाई है, हथ विच नहीं। लोग ने राम खिलौना जाना, कबीर कहन लोगों ने रब की प्राप्ति को खिडौनी समझ ले, धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना है, मेहनत है, तपस्या है। और इतनी मैं अर्ज कर रहा, इस तो वड्डी और कोई मेहनत नहीं जितनी नाम जपण की मेहनत है। इस वास्ते साहबा ने कह दिता है, दुनिया में कोई काम इतना औखा नहीं जितना औखा काम है नाम जपना। आखण औखा साचा नाम, यह औखा है, सब तो ज्यादा औखा है। बंदा चार घंटा ताश खेल सकता है, एक मिनट नाम नहीं जप सकता। बंदा अठ घंटा गप्पा मार सकता है, दो मिनट नाम नहीं जप सकता। कभी बगौर मुताला करके वेख लैना। तुसी आखो कि वाहगुरु वाहगुरु आखना कोई औखी गल है? महाराज कह रहे आखण औखा साचा नाम। दरअसल इस तरह वाहगुरु वाहगुरु बच्चे भी कह छड़ते हैं, सारी दुनिया कह छड़ी, कोई औखी गल नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरबाणी कह रही है जपण, उस ढंग नाल वाकई औखा है, हर बंदा नहीं जप सकता। जिस ढंग नाल मेरे पातशाह कह रहे हैं वो है ढंग के धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान जोग, वाहगुरु वाहगुरु का उच्चारण, उसे विच ध्यान जोग। यह हूँ गल बड़ी औखी, कौन जोड़े? धुन एक पासे जाती है, ध्यान एक पासे जाता है। यह धुन ध्यान की साधना से, धुन का मतलब है शब्द, ध्यान का मतलब है सुरत। शब्द सुरत का मार्ग है यह गुरमत। गुरमत की है शब्द सुरत का मार्ग। शब्द को कहने धुन आवाज, शब्द के अखरी अर्थ ने आवाज स्वर ध्वनि। तो ध्यान का मतलब है सुरत। सुरत को कि जोड़ना है शब्द के, धुन ते ध्यान नु एक करना है। ध्यान नु के विच जोड़ना है धुन दे, और धुन एक अलापनी है, आ अपने अंदरों कजनी है। वाहगुरु वाहगुरु की यह धुन, इस विच ध्यान जोड़ना, यह एक मिनट भी नहीं कर सकोगे, करके वेख लेना एक मिनट। एक मिनट बहुत ज्यादा, अद्धा मिनट भी नहीं कर सकोगे। अद्धा मिनट भी बहुत ज्यादा है, एक सैकेंड करना भी औखी गल है। एक सैकेंड, अगर कोई एक सैकेंड वास्ते भी शब्द ते सुरत नूं जोड़ सके, धुन ते ध्यान नूं एक कर सके, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है, उसके जन्मां जन्मांतरां के बंधन कटे जाते हैं। एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल पास के बीच ना। घंटा दो घंटा से कीर्तन इस वास्ते सुनना है, कथा इस वास्ते सुननी है, नितनेम इस वास्ते करना है कि साड़ी जिंदगी विच वो एक छिन आवे जिथे शब्द ते सुरत एक हो जा, जिथे धुन ते ध्यान एक हो जा। जिसका धुन ते ध्यान एक हो गया है, इस तरह के मनुख कोई थानू सैकड़ियां विच एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कथन अनुसार करोड़ों एक कर मिलेंगे। जन नानक को तन में किनहु, नारायण जह जीत। करोड़ इस वक्त 4 अरब के करीब आबादी है जमीन के उत्ते मनुखा की, तो जे करोड़ों ची 2-4 ने, तो तुम खुद अंदाजा लगाना जिन्हों का धुन ते ध्यान एक हो गया कुल कितने होंगे जमीन के उत्ते? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। दो हथां दी उंगलियां ते गिण लो उन्हां बंदियां नूं जिन्हां दी सुरत ते शब्द एक हो गई। शब्द एक पासे जावे, सुरत एक पासे जावे, जे सारे ही करदे ने, पर शब्द ते सुरत एक हो गई, धुन ते ध्यान एक हो गया। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जिथे धुन ते ध्यान एक हो गए ने, साहब कहते हैं उस बंदे के अंदर कुछ लक्षण प्रगट होते हैं, लक्षण कुछ खासियत प्रगट होने को पता चलता है कि शब्द ते सुरत एक हो गई। वो जड़िया खासियत ने, वो जड़े लक्षण ने, वह गुरु अर्जन देव जी ने 6 लिखे ने। 6 शब्द नूं आधार बना के ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਖੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੱਟ ਛੇ ਲਕਸ਼ਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਛੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੇ ਲੱਛਣ, ਤੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਵਣ, ਦੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਵਣ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅਪਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਛੇ ਲੱਛਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਗਿਆਨੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਣੇ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਿਵਰਜਤੇ, ਚੌਥਾ, ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਵਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੇ, ਛੇਵਾਂ, ਪਰਨਿੰਦਾਨ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰਹਿਣ ਕੇ, ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੁਰਜਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਣ। ਕਿਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਛੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਗਿਆਨੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਣੇ। ਨਾਮ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। परमात्मा दिया जड़िया जड़िया खूबियां भगतां दे सामने आईया, भगतां ने परमात्मा नू नाम दिते ने, कृष्ण राम है, मधुसूदन है, अलक निरंजन है, करतार है, निरंकार है, वाहेगुरु है। किस तरह इस्लामी जगत विच नाम ने खुदा है, अल्लाह है। जैसी जैसी खूबियां वेखिया ने, उन्हां खूबियां दे आधार दे परमात्मा नू नाम दिता गया है। उंज परमात्मा का कोई नाम नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कहंदे ने, अनाम है अठाम है। जाप साहब आप पढ़ते हो ना, थोड़े तो जो भी पढ़ता होगा, ये पंक्तियां आदि ने जाप साहब विच, अनाम है अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं, तू अनामी, तेनू नाम दिता जाता है, उंज तेरा कोई नाम नहीं। अठाम है तेरा कोई थां नहीं, ये नहीं आख्या जा सकता तू फलानी थां ते रहना, ऐसा कोई थां नहीं। सह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच भी फरमान करते ने, कहा नाम तां को कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो नाम दे। भी तेरा नाम की है साहब, कहने मैनु नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैनु कोई बोध नहीं। कहा नाम तां को कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो नावे, मैं की बखान करा, मैनु पता ही नहीं तेरा नाम की है। अनामे अठामे, ये जाप साहब दे दोबारा आता है, अनामे अठामे, तेरा कोई नाम नहीं। पर पहचान मात्र वास्ते नाम देना सी, जैसी जैसी खासियत, जैसी जैसिया खूबियां परिपूर्ण परमात्मा दिया वेखिया गई, वैसे वैसे नाम दे देते गए। तो जब महसूस होया भगतां नूं ओह रमिया होया, तां उन्हां दी रसना तो निकलिया राम, राम दे अखरी अर्थ ने रमिया होया। सहनसर नामा एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, सहनसर नामा, सहनस कहिंदे ने हजार, तेरे हजारां नाम, सहनसर नामा, ये बाणी गुरु अर्जन देव जी दी है। ते उस बाणी विच मेरे पातशाह राम दे अर्थ करदे ने, श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चकर पाण दर्श अनूपे। जिहदा कोई रंग नहीं, जिहदा कोई रूप नहीं, उहनूं कहिंदे ने श्री राम। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चकर पाण दर्श अनूपे। कहिंदन प्रहलाद राम राम जपदा सी, ते प्रहलाद दशरथ नंदन श्री राम जो राजा राम अयोध्या दे होए, उन्हां तो सैकड़े साल पहले होया। कौन प्रहलाद? राम जपदा सी, उहदी रचना ते राम हुंदा सी। राम दे अर्थ करदे ने गुरु अर्जन देव जी, श्री राम चंद जय रूप न रेखिया, जिहदा कोई रंग नहीं, जिहदा कोई रूप नहीं, जिहड़ा रमिया होया है, उन्हों कहते हैं श्री राम। एक सफाती नाम है, तहल्लुस है परिपूर्ण परमात्मा का। तो सहनसर नामे विच बहुत सारे नाम ने, ते हर नाम की व्याख्या गुरु अर्जन देव जी आप करते हैं। और साहबा ने अपनी एक अगम्मी पंक्ति दे साफ कह दिता है, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने हाँ जितने तेरे नाम ने, ते जिस जिस नाम दे नाल जिसने तेनू याद कीता है, असी हर नाम तो सदके जाते, असी हर नाम तो कुर्बान जाते हाँ। बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम ने असी कुर्बान जाते हाँ। कितने नाम ने साहब कहन, कोई कुछ जपदा पिया, कोई कुछ गुरु नानक देव जी महाराज दियाँ पंक्तियां, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसाइयां कोई अला, कोई गुसाई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है। साहब कहते हैं बलहारे जाओ जेते तेरे नाम, असी सदके जाने जितने तेरे नाम ने, फिर जिस जिस नाम दे ची जिसने रटन कीता है दिलों गल बन गई, क्योंकि उन्हें तो उसका कोई नाम है नहीं। पहचान मात्र वास्ते या उस दिया कुछ खूबियां नू सामने रख के जिहड़ा भी नाम रखिया गया उहदे नाल उह प्रगट होया। इस वास्ते साहब फ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ ਜੇਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਤੀ ਨਾਮ ਤਖਲੁਸ, ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ। ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ, ਜਦ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੂਰਣੇ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੇ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਪਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਖੇਗਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਖੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ, ਆਖਦੇ ਹੀ ਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਜਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਮੰਤਰਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨੰ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੂਰਣੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ। ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਕੁਛ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਠੀ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਸਾ ਰੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੂਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਖੀਅਲ ਲੇਕਰ, ਜਿਸੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਣਾ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਸਾ ਰੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। जन्म ते मौत दे उते खड़ा है। और ऐसा नहीं जिस दिन सदा जन्म होया ना उसी दिन तो मौत है, ऐसा नहीं कि मौत एक दिन आऊंगी, गुरु ग्रंथ साहब ऐसा नहीं मनते, मौत रोज आऊंगी। छिन छिन औद बिहात है टूटे घट जो पानी, असी रोज जीवदे पया रोज मरदे पया, जितनी मिथी हुई उम्र लेके आए रोज घटती पी है, ते जब रोज घटती पी है रोज मरदे पया, रोज जीवदे भी पया रोज मरदे भी पया। ते जो हम मोटे रूप विच कहना होवे तां बंदा दो दफा उंज भी मरदा है। किसी जवान बंदे तो पुछो भाई थोड़ा बचपना किथे गया, कहिंदा मर गया, हुण किथे बचपना। ते किसी बुढ़े कोल पुछना जवानी किथे गई, कहिंदा मर गई खत्म हो गई, हुण किथे जवानी, बचपना मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ेपा भी मरेगा, इन्हें रहना है। दो दफा तो मर गया पहले, बचपना मर गया, जवानी मर गई, मोटे रूप इंज दिखाई देता है। ते साहिबां दी बाणी कहिंदी है नहीं बंदा रोज जीवदा रोज मरदा, ये गल वक्री है कि बंदे नू जीवना दिखाई देता है मरना दिखाई नहीं देता, वरना रोज मरदा। छिन छिन औद बिहात है फूटे घट जो पानी, जिस तरह जीवना दिखाई देता है मरना नहीं दिखाई देता, इसे तरीके नाल खुशी दिखाई देती है गम नहीं दिखाई देता, इज्जत दिखाई देती है बेइज्जती नहीं दिखाई देती, नफे दिखाई देते नुकसान नहीं दिखाई देता, सुख दिखाई देता दुख नहीं दिखाई देता, वरना जुड़े हुए ने कट्ठे ने। जिन्हों ये देखने की जाच आ जाए साहब कहते हैं उस बंदे के अंदर दूसरा लक्षण प्रगट हो गया। तो महाराज कहते हैं पूर्ण पुरख जोड़ा साधु है गुरसिख गुरमुख है उन्होंने इस गल का पता है, ज्ञान सम दुख सुख, दुख सुख उसके वास्ते एक समान है, जैसा सुख वैसा दुख, उन्हों ये भी पता है कि जितना सुख वधेगा उतना ही दुख वधेगा। एक होर भी कभी अंदाजा ला लेना, जितनी इज्जत वधती है बेइज्जती उतनी ज्यादा होती है, जितना ज्यादा सुख वधता है दुख उतना ही ज्यादा होता है, जितना घट सुख है उतना दुख भी घट है, ये दोवें दीवारां बराबर उसरदियां ने। और कभी कल्ला सुख नहीं होता, सुख जितना वधेगा दुख उतना ही वधेगा। कभी बहुत इस ढंग नाल मुताला करोगे तो गल सामने स्पष्ट हो गएगी, गल सामने खुलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला भी वह बंदा तो झख मारदा है जिहड़ा रब कोल सिर्फ सुख मंगदा है, सिर्फ सुख। पंक्ति मैं पातशाह जी थोड़े सामने रखा, नानक बोलन छखना दुख छड मंगे सुख, जिहड़ा दुख नू एक पासे रख के ते सुख मंगे। साहिब कहिंदे झख पिया मारदा इहनू पता ही नहीं सुख दे नाल ते दुख है, तू सुख मंगदा पिया दुख भी नाल आवेगा। भगत कबीर कहिंदे ने सुख मांगते दुख आगल आवे, सो सुख हमू न मांगे आवे। ए परिपूर्ण परमात्मा सुख मंगीए ते जितना वड्डा सुख मंगीए उतना ही वड्डा दुख नाल आ जांदा, असीं मंगदे ही नहीं, गल खतम। भगत कबीर कहिंदे मंगदे ही नहीं, सुख मांगत दुख आगल आवे। हुण जितने धार्मिक मंदिर ने कोई प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अरदास कर रहा है, जोगड़ी कर रहा है, आखिर उहदे च की है, हे प्रभु तू सुख दे, इन्नी गल है ना, तू सुख दे। ते गुरु नानक का फैसला मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलन जखना दुख छड मंगे सुख। निजी ख्याल मेरा कोई भी नहीं होगा, जो कुछ थोड़े सामने रखांगा गुरबाणी तस्दीक कर देगी। नानक बोलन जखना, ओ बोलना जख मारना है, केड़ा दुख छड मंगे सुख, दुख नु एक पासे रख के सुख मंगना। सुख दुख दोवे कपड़े पहरे जाए मनुख, साहब कहिंदे ते दोवे कपड़े ने बार बार बदलने पैंदे, कदी सुख कदी दुख, इते बदलने पैणगे। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पूर्ण पुरख की पहचान दसते ने कि वह सुख दुख तो उच्चा होंदा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर बह नहीं जाके कंचन माटी माने। सुख दुख तो उच्चा है, जैसा सुख वैसा ही दुख, जैसा दुख वैसा ही सुख, ओदे वास्ते दोवें ही बराबर ने, कोई फर्क नहीं। दो तरह के भगत हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तुसी भगतों की पढ़ो ना, कुछ भगत ऐसे ने जो कहिंदे ने हे प्रभु तेरी तरफों मिले होया सुख सानू प्रवान है, पर तेरी तरफों आया होया दुख भी सानू कबूल है। वह भी असी कबूल करते हैं, वह भी असी प्रवान करते हैं। भगत नामदेव जी महाराज के शब्द, जे राज दें तो कमन वडाई, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाए। जे तू सानू सिंघासन से बिठा देवे तो साडा वधना की है, जे तू दर दर का भिखारी बना देवे तो साडा घटना की है। ये तो शरीर के नाल चलता है, जिंदगी के नाल चलता है, सानू कबूल है, सानू प्रवान है। इस वास्ते कहने भगतान दुखी करना बड़ी औखी गल है। क्यों? दुख सुख तो उच्चे है, उन्होंने परेशान नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी महाराज कहने, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है यार। हुण लोकी सानू भला भला आखन उहदे नाल कोई मतलब नहीं, लोकी सानू बुरा बुरा आखन गुरु रामदास जी कहने कोई मतलब नहीं, साडा कोई मतलब नहीं। असीं इन्हां दी गल तो बहुत उच्चे हाँ। तो मैं कई दफा हैरान होना, हुण चार बंदे भला भला अगर ना आखन तो तू औखा क्यों हो रही, क्योंकि लोगों को तेन सर्टिफिकेट चाहिए। अगले कहन ता ही तू भला है, कोई भला नहीं। दरअसल मनुख के कोल जिहड़ियां भलाइया ने ना, वह भी अखौती ने। चार बंदे कहने बड़ा ही भला है, बहुत भला है, बंदा फुल जाता है। तो चार बंदे कह लग पे ने भैड़ा है, यह भैड़ा है, यह दुखी हो जाता है। भी तू दुखी क्यों होना है? इसका मतलब तेरी जिंदगी दूजिया के हाथ च है। दूजा जो कुछ भी कहे तू परेशान हो जाएगा, दूजा जो कुछ भी कहे तो फुल पाएगा। फिर तेरा अपना आप से तेरे को ना ना होया, दूजिया के हवाले कभी गौर मुताला करना। असी दूजिया के हवाले लोग मिलते ने, कहने फलाने ने सानू बड़ी इज्जत दिती, फलाने ने सानू बड़ा सन्मान दिता, फलाने ने सानू बड़ा सुख दिता। ए बंदा अपना तेरे को कख कोई नहीं, जो कुछ भी दिता गया तू बहुत व्डा दिखा रही है। तेतों व्डा और कड़ा मंगता होना है? कोई धन मंगता है, कोई अन्न मंगता है, तू इज्जत पे मंगता है, सुख पे मंगता है, प्रतिष्ठा पे मंगता है, सम्मान पे मंगता है। उन्हें तेरे को कख कोई नहीं। दूजा कोई दे रहे थे तेरे को इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और कुछ नहीं। फिर यह भी कहता है भी दूजे ने साड़ी बड़ी निरादरी की थी। कौन दसे? जिड़ा दूजा सम्मान देता है अपमान भी देता है, जो सुख देता है वह दुख भी देता है। इतने संसार में ऐसा चलता है। इस वास्ते गुरु रामदास जी महाराज कहने, कोई भला भला आखे साडा कोई मतलब नहीं। पांच दस बंदे कह लग पे ने बड़ा गुरमुख है, बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, बंदा फुल जाता है। तो पांच दस कह लग पे ने बहुत भैड़ा है, कौड़ियों भी खुल है, बंदा औखा हो जाता है, बंदा बेजार हो जाता है। लेकिन गुरु रामदास जी कहने, सारा जगत भला भला आखे, असी उन्होंने कहन करके फले नहीं हाँ। ते सारा जगत बुरा बुरा आके कोई मतलब ही नहीं, कह दो इस तो उच्चे हैं। एक वृद्धि बन जाती है, एक मन की अवस्था बन जाती है। वरना आम लोग करीबन करीबन उसे ही पद्धर से रहते हैं। इस वास्ते दुखी भी हो जाते हैं, फुल भी जाते हैं। मैंने इस तरह के अनेक मनुख मिले ने, कहें असी गुरुद्वारे इस वास्ते नहीं जाते, फलाने ने एक गल कह दी सी सानू चुभ गई है, हुण नहीं जाते, कोई मतलब नहीं। तो मैं उन्होंने कहना हुंना, कोई फलाना ऐसी वैसी गल कर छड़े तू अपना घर छड़ देगा, अपनी पत्नी छड़ देगा, अपने बच्चों को छड़ देगा, तू अपना परिवार छड़ देगा। कोई ऐसी वैसी गल कर छड़े तू अपना घर नहीं छड़ता। तो किसी ने ऐसी वैसी गल कर दिती है, तू गुरु का घर छड़ दिता है, दरअसल तू अंदरों छड़िया हुआ ही सी, तेनों बहाना चाहिए सी, मिल गया, गल खत्म, बहाना चाहिए सी, मिल गया तेन। वरना कोई ऐसी वैसी गल करे तू अपना घर छड़ता, तू ये थोड़ी कहना फलाने ने अजे एक गल कह दी हूँ मैं अपने घर नहीं जाना। नहीं, घर से तू जाना, भावे सौ तेन ताने मारे, पर एक निकी जी गल हो जाए तू कह देना हूं मैं नहीं जाना, फलाने ने वो गल कह दी सी। वो पुरखा तू ते अंदरों छड़े हो, गुरु को बहाना एक चाहिए, कई बहाने चाहिए ने छड़न के, बस टुटे ही हो जाए। निके जे बहाने टुट गए। गुरु रामदास जी महाराज कहने, सारा जगत भावें भला भला आके ते सारा जगत भावें बुरा बुरा आके कोई मतलब नहीं, असी ते अपने आप में गुरु अमरदास जी के चरणों को कुर्बान कर दिता है, निछावर कर दिता है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला कि दूसरा लक्षण जिहड़ा पूर्ण पुरख का है वह है कि ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैरण।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕੁਛ, ਜੈਸਾ ਦੁੱਖ ਵੈਸਾ ਸੁੱਖ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਕੰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਖ ਕੋਠੜੀ ਦੇ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ, ਹਥਕੜੀਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਾਂ ਨਦੀਓ ਹੈ ਡਰ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਗੰਮੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਪੁੱਤਰ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਮਾਲ। ਬਈ ਇਹ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਨ ਵੀ ਸਾੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਔਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਵਰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਛੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਲਮ। ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਨ ਬੰਦ ਚ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਵੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਦ ਸਿਉ ਬਨ ਮਾਈ। ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਗਿਰਮਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਰਾਸਿੰਧ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਤਨੀ ਸੈਨਾ ਨਾ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ। ਆਖਿਰ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੁਚਕੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਚੇ। ਸੈਨਾ ਲੰਘ ਗਈ ਜਰਾਸਿੰਧ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਥੁਰਾ ਤਜ ਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ ਮੁਚਕੰਦ ਹਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰਮਾਈ। ਬਲਬੀਰ ਪਿਤਾ ਰਘਬੀਰ ਪਿਤਾ ਦੁਖ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲਹੇ ਥਉ ਮਾਈ, ਕਹੋਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਜਗ ਮੇ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਜੋ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਨਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਘਬੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਾਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤਨ ਧਾਉ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਨਾ ਆਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, समग्र रूप दे जिवें धुप सारिया घर च जाती है, ठंड पे तो ठंड सारिया ही घर च जाती है, रात आती है तो सारे घर च ही रात पैंदी है, दुख से व्यापक है, सारे तन विच प्रगट होंदा, हर एक दे विच प्रगट होंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे दूसरा लक्षण महापुरुष का यह है कि वह अपनी सुरत इतनी उच्ची कर लैंदा है, दुख आते ने सुख आते ने लंघ जाते हैं। सुख कोई उन्हें आयाश नहीं बनाता, दुख उसको बेचैन नहीं करता। असी सुख दे क्षमा करनी सुखियारे हो जाने, दुख दे बेजार हो जाने, बेचैन हो जाने, दोवां हालतां गावां डोल गई, दोवां हालतां सुरत थले चली जाती। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर है, यह दूजा लक्षण है। ते तीसरा लक्षण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जते। सहकन उसका तीसरा लक्षण यह होगा कि उसकी दया सारे जीवों से होगी, उसके अंदर बड़ी कोमलता होगी, हिरदा बड़ा पिघलिया होया होगा, उसके अंदर बड़ा चरमा होगा, और वह दूजिया के दुख को दुख समझता होगा। अपना दुख कोई दुख नहीं, दूजे का दुख दुख है। साढ़े वास्ते की है, अपना दुख तो दुख है, दूजिया का दुख कोई दुख नहीं। आम जगत की हालत यह हो जाती महापुरुष दे विच ते आम संसारी विच यही अंतर। चौथा लक्षण महापुरुष का की है, भोजनं गोपाल कीर्तन अलिप माया जल कमल रहे थे, एकाग्रता बख्शने। चौथा लक्षण उसका यह है, साहब कहने ओदा जिहड़ा भोजन होगा गोपाल का कीर्तन होगा। हुण तुसीं आखोगे कीर्तन किस तरह भोजन हो सकता है, आखिर भोजन चाहिए, अन्न पानी चाहिए, कीर्तन किस तरह भोजन बन सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज होर थां ते भी लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी खुराक परमात्मा का नाम है, उसका ज्ञान है। हुण सानू इतना पता है कि भोजन तो तृप्ति मिलती है, मनुख नूं अजे यह बोध नहीं कि भजन तो भी तृप्ति मिलती है। ये तो बंदे नूं पता है कि भोजन तो ताकत मिलती है, हुण बनता है, लेकिन अजे विश्वास नहीं बनेगा कि भजन तो भी ताकत मिलती है, भजन तो भी सुखुरती मिलती है, भजन तो भी कोई गल बनती है। थोड़ा जिहा मैं खुलासा करा इसका, कहिंदे जिहड़ा बंदा अंदरों बहुत दुखी है, बहुत बेचैन होवे, तो दुखी बंदा ज्यादा खाता है, अंदर खला है, अंदर खालीपन है, तो आखिर उसको भरना है, किस तरह भरे, खुराक नाल भरता है, भोजन नाल भरता है। बंदा बहुत प्रसन्नता विच होवे, बड़े खेड़े विच होवे, बड़ी खुशी विच होवे, कहिंदे खुराक घट जाती है, खाना घट जाता है। एक उदाहरण देना, अक्सर हिंदुस्तान विच देखण नूं मिलता है कि एक लौते बच्चे की शादी होवे, ते घर विच तरह तरह के मेहमान आवन, ते मेहमान तरह तरह के पदार्थ छक रहे हैं, ते हुण उस मां नूं कोई आके तू भी छक, कहिंदी मैनूं भुख नहीं लगी हुई, इधर भजदी पई है, उधर भजदी पई है, मैं मैनूं भुख नहीं, बई क्यों नहीं भुख, इन्नी खुशी नाल भर गई है, भुख नूं भुल गई है, भुख नहीं खुशी नाल भर गई है, ते खुशी ताकत देती है, खुशी ताजगी देती है। वक्ती तौर पर एक जड़ी खुशी है उसने भुख न घटा दिता है, तो जिसनों नाम की खुशी मिली होते भोजन आपे घट जाता है। घर मंदिर खुशी नाम की नगर तेरी परिवार, पंद्रह पंद्रह दिन गुरु नानक ने कुछ नहीं छकया, तो मरदाना अगर उसे मंगता है तो उसका कसूर नहीं है। वो दूजे चौथे दिन कह दिता सी बाबा हूं तो भोजन का इंतजाम कर, हूं तो कुछ गल बना, चार दिन लंघ गए हैं, पांच दिन लंघ गए हैं, हुण ते भोजन का उपराला हो गए, या फिर जिस तरह की मस्ती बाबा तेरे को मैनू दे, वो खुशी मैनू दे, उस तरह की मस्ती मेरे को। इत्थे बंगाल में एक माता हुई है, थोड़ा अरसा होया गुजरी है, वो तीन महीना समाधि विच रही है, अंदर बड़ी खुशी विच रही, तो तीन महीनों तो बाद उसका वजन तोलिया गया, क्योंकि तीन महीने उसने खाधा नहीं, कुछ भी नहीं खाधा, वजन घटिया नहीं, कोई कमजोरी नहीं आई। उस तो फिर अंदाजा लाना पैंदा है कि लंबिया समाधियां जिहड़े महापुरुष होंदे सन, ये गल्लां सही ने, कि ताकत है उसे तरीके नाल बनी हुई है, शरीर का वजन नहीं घटिया, कमजोरी भी नहीं हुई। साहब कहते हैं कि चौथा लक्षण जिहड़ा उसका है भोजन होवेगा गोपाल का कीर्तन, परमात्मा का नाम जपेगा उस चों इसनू ताजगी मिल जाएगी, उस चों ही उसनू खुशी मिल जाएगी। भोजन वो नाम मात्र लगेगा, वास्तविक उसका जिहड़ा भोजन है वो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भोजन गोपाल कीर्तन अलिप माया जल कमल रहते। साहब कहते उसका जिहड़ा भोजन होवेगा वह गोपाल का कीर्तन होगा, प्रभु की कीर्ति होगी, इस खुराक तो बिना वो रह नहीं सकेगा। ये चौथा लक्षण। ते पंजवां साहब कहते ने पर निंदान स्रोत सरवण आप त्याग सगल रेण के। जिथे पराई निंदा करता नहीं उथे पराई निंदा सुनता भी नहीं, कदे ही नहीं सुनता। निंदा का मतलब है गल खटा के बयान करनी, ते उस तक का मतलब है गल वधा के बयान करनी। ते दोहां तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने सानू रोकिया, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्माना, जन नानक इहो खेल कठन है किनू गुरमुख जाना। भई ये काम बड़ा औखा है, केड़ा? उस्तत ते निंदा नू त्यागना। उस्तत की गल वधा के बयान कर रहे हैं, है कंडा ते कई जना फुल है फुल है, है अंधेरा ते आखी जना रोशनी है रोशनी है, है मनमुख से कई जना गुरमुख है गुरमुख है, ये उस्तत है। ते निंदा की है फुल नू कंडा कही जाना, दिन नू रात आखी जाना, भगत नू दुष्ट आखी जाना, ये निंदा हो जाती है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी उस्तत है। ते ये दोवें झूठ ने मन मैला होंदा, उस्तत नाल भी मन मैला होंदा है, निंदा नाल भी होंदा है। ये दोवें बंदे नू बहदी कला च लै जांदियां ने, उस्तत ते निंदा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रोकदे पुरखा ना तू गल वधा के बयान कर ना तू गल घटा के बयान कर। ते मनोविज्ञानी अज ऐसा कह रहे हैं कि समुची दुनिया विच या ते गल वधा के बयान की जाती है या गल घटा के बयान की जाती है। गल जितनी है उतनी नहीं आखी जाती। कंडे नूं कंडा कह देना, फुल नूं फुल कह देना, ये सच है, पर बंदा सच अधूरा बोलता है। कई दफा फुल नूं फुल ते कह देता है ते हुण इहनूं आखो तू कंडे नूं कंडा कर, कहिंदा नहीं ये नहीं, कंडे नूं कंडा आखे नहीं चुभेगा, सानूं परेशान करेगा, सानूं तकलीफ देवेगा। तो बंदा सच अद्धा ही बोलता है, शरीफ नूं शरीफ कह देता है, बदमाश नूं बदमाश आखण दी हिम्मत नहीं कह, गुरमुख नूं ते गुरमुख कह देता है, दुष्ट नूं दुष्ट आखण दी हिम्मत नहीं है, अधूरा सच बोलता है। ते अधूरा जिहड़ा सच बोलता है वह झूठ ही होंदा है। सच होंदा या ते पूर्ण होंदा है मुकम्मल होंदा है, अधूरा नहीं होंदा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का लिखित जफरनामा मैं एक दिन पढ़ रहा सी। जफरनामे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कुछ औरंगजेब दीआं खूबियां भी लिखियां ने, उहदीआं सिफतां भी, उहदीआं खूबियां। महापुरख की यह पहचान है कि उन्हें निंदा करेगा ना उस्तत करेगा, गल जितनी है उतनी करनी। साहब कहिंदे ने ऐ औरंगजेब, एक ते परिपूर्ण परमात्मा ने तेनों खूबसूरत बनाया, दूसरा तू निशानचीन है, तेरा निशाना खता नहीं जाता, तीसरा तू नीति का बड़ा पंडित है, राजनीतिक है, बहुत उगा राजनीतिक है, ते चौथा तू रोजे भी रखना है, नमाज भी पढ़ना, हाथ में तस्बीह भी रखना, उठदा तू अलल सुभा है, अमृत वेले उठना है, जकात भी देना है, दान भी करना है, फिर हाथ नाल टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वह बाजार बिक दिए, उस दे नाल तू रिजक खाना है, रोटी खाना है, खजाने के पैसे की तू रोटी भी नहीं खाता, इतना वड्डा तू परहेजगार है, ये तेरिया खूबियां ने, ये ते मैं मनदा, पर तू फकीर नहीं है, खुदा शनास नहीं है, महा झूठा से भरे भी है, तू राम अन्ना दानम के यज्ञा शनास, बरामद जतो कार हाजल हराश, मैं तेन खुदा शनास नहीं मनता, तू आखिर मैं खुदा नू जानन वाला कतई नहीं, तू दुष्ट है कठोर है, तू ते अपने भरावान नू कतल कर छड़िया, तू अपने प्यो नू कैद कर छड़िया, औरंगजेब ने प्यो नू भी कैद कर छड़िया सी, और जिस वक्त कैद किया है दरवाजा बंद करके ताला मार के चाबी अपने कोल रख ली, संतरी नू नहीं दिती, सिपाही नू नहीं दिती। और हुक्म कर दिता जिस वक्त दो टाइम रोटी जाएगी मेरे सामने जावे मैं दरवाजा खोलांगा। आप शक सी मता कोई कट दे गए, मता कोई भजा दे गए मेरे प्यो ने, ते मेरा प्यो फिर कोई लाओ लश्कर कट्ठा करके लियावे ते मेरे को राजपाठ खोल लवे। इस वास्ते चाबी अपने कोल रखता सी। गर्मिया के दिन सन आगरे के किले विच कैद सी शाहजहां। जेल के दरवाजे दियां सलाखां बड़िया बारीक सन। शाहजहां नूं प्यास लगी ते सिपाही नूं कहण लगा पानी चाहिए। गर्मिया के दिन सन, बड़ी भरखा लगी, पानी चाहिए। सिपाही कहण लगा भई जहां बना दरवाजे विचों तो मैं पानी का गिलास दे नहीं सकता, बहुत छोटे सुराग है ते चाबी औरंगजेब कोल है। शाहजहां कहण लगा औरंगजेब मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, जा उन्होंने कह तेरे बापू नू तेरे अब्बा नू प्यास लगी, वो आप आ जाएगा पानी पिला जाएगा। सिपाही जी पहुंचे है औरंगजेब के कोल ते कह दिता है शाहजहां नू प्यास लगी है, त्रिखा लगी है, लिहाजा दरवाजा खोलना है। औरंगजेब कहने लगे नहीं, रात के वक्त जो रोटी जाएगी उदो पानी चला जाएगा, हूँ मैं नहीं जाना, हूँ दरवाजा नहीं खोलना। सिपाही वापस आ गया तो कहता शाहजहां जहां बना रात को जिस वक्त रोटी आएगी पानी भी आ जाएगा, हूँ नहीं मिल सकता। औरंगजेब कहना हूँ दरवाजा नहीं खुलता। रो पिया उठे शाहजहां जारो जार, प्यास उसने बड़ी लगी सी, दिल नू इतनी चोट लगी, जबान चो कुछ फिकरे निकले ने शायरी दे रूप दे चे, ते हिंदुस्तान दे च आलमा दी दुनिया दे च शाहजहां दे ये गीत बड़े मशहूर है। आलमा दी दुनिया दे च, सियाणियां दी दुनिया च, तुसी ध्यान नाल सरवण करना, शाहजहां दी जबान चो ये बोल निकले, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवाए बूदम, इमरोज है मोहताज है यक का सया। शाहजहां कहता है ऐ मेरे बच्चे, ऐ होनहार बच्चे, एक दिन मैं लखा असवारा का मालिक सी, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवाए बूदम, एक दिन मैं हजारा असवारा का मालिक सी, इमरोज है मोहताज है यक का सयाब, आज मैं मोहताज हां एक गिलास पानी वास्ते नहीं है। दरी दुनिया मगरूर ना बायद बूद, इस झूठी दुनिया का इस ढंग नाल माण नहीं करना चाहिए। मैनू ही वेख, मैं कल हिंदुस्तान के तख्त का वारस, अज पानी के गुट वास्ते तरसता है। मैनू वेख, मेरे शिक्षा है। अगे जिहड़ी गल कहीए शाहजहां ने बड़ी कीमती कह दी, वो कहिंदा आफरी हिंदुआ हर बाप। हुण कोई मुस्लिम मुगल शहनशाह हिंदुआ दे बारे ये गल आके बड़ी कीमती है, कहिंदा आफरी हिंदुआ हर बाप के मुर्दा रामे दिहंद दायम आप, शाबाश है हिंदुआ ते, आफरीन है हिंदुआ ते कि वो मर भी जाए ते पानी दें, मां मर भी जाए ते पानी दें, पितरां नूं पानी दें, प्यो मर गया दादा मर गया पानी पै देते, आफरी हिंदुआ हर बाप के मुर्दा रामे दिहंद दायम आब, ऐ फिसर तू अजब मुसलमानी, जिंदा रामे जानम बा आप न रसानी, ऐ मेरे बच्चे तू अजीब मुसलमान है, क्यों तेरा पानी दे घुट वास्ते तरसदा पे जिंदा ते तू पानी नहीं दे। शाबाश है हिंदुआ ते मरे हुए प्यो नूं पानी दे जांदे ने, मरे हुए दादे नूं पानी दे जांदे ने, तू जीवदे नूं नहीं देंदा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ऐ औरंगजेब ये तो ठीक है, तू खूबसूरत है, निशानची है, राजनीतिक है, अमृत वेले उठना है, रोजे रखना है, नमाज पढ़ना है, तस्बीह खेलना है, पर सब कुछ करदे होया भी तू दुष्ट है। तुरा मन नदानम के यतना शनास, बरामद तो कार हाजिल खराश, तू खुदा शनास नहीं है, तू खुदा नूं नहीं समझिया। जे किधरे खुदा नूं समझे आउंदा ते पानी दे घुट वास्ते प्यासा तू क्यों नूं नहीं मारना सी, तू किथे जाने है, तेरा हिरदा इतना सख्त, तू इतना कठोर, तू इतना ज्यादा। हुण खूबियां भी बयान कर दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने, इत्थे महापुरुष की पहचान है। ਵਰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਸੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਖੇਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਦ ਕੁਰਾਂ ਬਾਹੁਰੀ ਕਸਮ ਮਰਾ ਏਤਬਾਰ ਨਾ ਯਕ ਜ਼ਰਰਾ ਦਮ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਤਤ। ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਭ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਕੋ ਜਿਤਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਅਤੀ ਨੇਓ, ਮੂਹ ਗੋਧ ਹੋਏ ਮਲਮੂਤਰ ਕਰ, ਯੇ ਰਸ ਨਾ ਲੱਗ ਲਿਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਲਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਹਬਤ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰੰਜਮ ਬਸ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸੋਹਬਤ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰੰਜਮ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਕੇ ਬਦਮ ਹੁਸਨ ਨੁਮਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਬਮ ਹੁਨਰੋ ਕਮਾਲ ਬੀਨਤ, ਹਾਰਮ ਗੁਲ ਯਾ ਸੁਨੀ ਨੁਮਾਇਦ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਖਲਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਕ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਤਾਂ ਐਵੇ ਮਰਾ ਬਮਨ ਨੁਮਾਇਦ। ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਕ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਲੋਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਕ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਤਾਂ ਐ ਬੇ ਮਰਾ ਬਮਨ ਨੁਮਾਇਦ। ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉਸਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣਨ ਆਗ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰਹਿਣ ਕੇ। ਛੇਵਾਂ ਲੱਛਣ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੇਵਾਂ ਲੱਛਣ ਸਹਿਕਨ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਸੰਮਿਤ੍ਰ ਸਤਰੇ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਲੱਛਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਛੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਖਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਤੀਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਹ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਪਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਖਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ, ਸੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੱਛਣਾ ਕਰਕੇ, ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਨ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ। ਵਰਨਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਧੂਰਾ। ਛੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਛੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਰਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।